हम जो रकम किसी को देते हैं उसकी तीन सूरतें, या तो बतौर अमानत देंगे, या बतौर कर्ज देंगे, या बतौर इन्वेस्ट देंगे। अमानत क्या होती है? अमानत को खर्च नहीं किया जा सकता, उसकी पूरी तरीके से हिफाजत करना होती है। कर्ज का मकसूद खर्च करना होता है। अमानत और कर्ज में बड़ा फर्क यह है, कर्ज हसना वो होता है जिसपे कोई नफा ना लिया जाए, बगैर किसी जाती लालच के सामने वाले को दिया जाए, उसकी मदद के तौर पर, नेकी एहसान और बिर के तौर पर। जो रकम बतौर इन्वेस्ट दी जाए इसे रासुल माल या कैपिटल कहते हैं। ये रकम किसी दूसरे को नफा नुकसान की बुनियाद पर दी जाती है। रिबा वल फज्ल अल मुस्तहक लि अहद अल मुताअक्किदैन फिल मुआवज़ाति अल खाली अन इवज शुर्रता फीही। सूद उस इजाफे को कहते हैं कि जो इजाफा मशरूत हो कि ये इजाफा करना ही करना है, और वो इजाफा किसी चीज के बदले से, मुआवजे से खाली हो। सूद की पहली किस्म कर्ज पर नफा की सूरतें हैं। कर्ज पर नकदी नफा लिया जाए, एक लाख किसने दिए, एक लाख दस हजार, एक लाख एक हजार, एक लाख दो हजार, एक लाख एक रुपया भी लेगा, ये भी सूद होगा। नफे की दूसरी किस्म कौन सी है कि कर्ज पर हाथ में तो कुछ ना आए लेकिन कुछ सहूलतें मिल जाएं। हदीस पाक में फरमाया गया, कुल कर्ज़िन जर्रा मनफियतन फहुवा रिबा। कर्ज से जो भी नफा उठाया जाए वो सूद है। पैसे थोड़े ले रहे हैं हम, हराम है हमारे ऊपर तो पैसा लेना। लेकिन बहुत सारे हाजी, नमाजी, दाढ़ी वाले उस दूसरी किस्म में इसलिए मुब्तला होते हैं कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि ये भी सूद है। पैंट के डब्बे में टोकन डाल दिया गया है, मिसाल के तौर पर 5000 का डब्बा है और उसमें 500 रुपए डाल दिए। सबको पता है कि अब ये डब्बा जनाब 4500 का है, इसमें कोई कबात नहीं है, शरीयत से कोई तरीका नहीं टकराता, यहाँ तक तो बात ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार ने तो कंपनी का सील पैक डब्बा भेजना था, उसने बेच दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो क्यों बाउंड है कि जनाब वो वापस आए और दुकानदार अपनी जेब से पैसे दे उसको। चलो ठीक है, यहां तक भी जायज है, दे दे वो जेब से पैसे। ये ऐसा ही है कि किसी पार्टी को चेक देना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने दोस्तों को यार आप जरा चेक दे दो, उसने आपके ब्याह पर दिया है ना, ये कर्जा है। गाहक को रंग का डब्बा बेचना तिजारत थी, लेकिन गाहक को टोकन के पैसे देना तिजारत नहीं है। ये दुकानदार ने कंपनी की ब्याह पर कर्जा दिया है, ठीक है, जितना दिया उतना वापस ले, जायज। लेकिन कंपनी इन दुकानदारों को ऊपर पैसा देती है, इसलिए कि अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये गाहकों को मना कर देंगे कि हम आपको कैश नहीं दे रहे। उमरे पे जाके मैंने 5-स्टार होटल में दिल्ली का 2000 दिरहम पे करना है, मैंने पूरा महीना वहां मक्के मदीने की बरकतें लूटनी है। मक्के मदीने की बरकतों का ताल्लुक 5-स्टार होटल से नहीं है ना, काबे के नूर से, गुम्बदे खजरा के नजारों से। हमने कुछ चीजों को इस तौर पर अपनी मजबूरी बनाया होता है जी मेरा स्टेटस जो है वो नीचे आ जाएगा। अच्छे भले घर में रह रहे हैं, सूद पर पैसा लेके बंगला लेंगे जी, मेरी जरा पीआर बन जाएगी। सूद की दो किस्में की हमने, कौन कौन सी? कर्ज पर नफा और मखसूस चीजों के तबादले पर पाए जाने वाला सूद। कर्ज वाले नफे की हमने कितनी सूरतें की? दो सूरतें की, के जहां नकदी की सूरत में सूद दिया जाता है, और दूसरी सूरत क्या, जहां पर बेनिफिट की सूरत में कर्जे पर नफा मिलता है। अभी तक हमने इस पर गुफ्तगू की, अब हम इस पर चलते हैं। कर्ज पर लिया जाने वाला कोई भी नफा हो, कर्ज की ब्याह पर कोई भी नफा वो सूद के हुक्म में, कि हदीस पाक में फरमाया गया, कुल कर्ज़िन जर्रा मनफियतन फहुवा रिबा। कर्ज की बुनियाद पर जो भी नफा उठाया जाएगा वो सूद होगा। अब इसकी मिसालें क्या है? एडवांस किन मकासद के तहत दिया जाता था? सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? अब जनाब मामला ये है कि बिजनेसमैन पैसे में खेलता है, कैलकुलेटर उसके दिमाग में चल रहा होता है, इतना माइनस, इतना प्लस, इतना फायदा, डन करो जनाब, टेल ओके। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि इसकी मजबूरी है दुकान लेना, इसको दुकान चाहिए चाहिए, और मेरे पास दुकान तो है लेकिन पैसे नहीं, दुकान तो है लेकिन पैसे नहीं है। दुकान वाला ही चाहता है कि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं जिससे वो कारोबार करे। उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, एडवांस तो हमारी मार्केट में चलता है 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये मुझे दे दो बयाने में, दुकान रख लो एक साल के लिए, कोई किराया नहीं देना। हमने शुरू में क्या गुफ्तगू की थी कि जो ये एडवांस दिया जाता है, इसकी हैसियत क्या है?
कर्ज
की हैसियत। अपने भाई को कोई दुकान मुफ्त नहीं देता, एक चाचा का पुत्र है, क्यों दिए? उस रकम के बदले में दी है जो इसने मार्केट से हटकर ज्यादा ली, जो एडवांस इसने ज्यादा लिया, उसकी वजह से दो चीजें पाई जाती हैं। या तो बिल्कुल कह देते हैं कि जनाब ये मेरी दुकान है, ये मेरी जमीन है, काश्तकारी करो, एक घर है, मुफ्त में रहो, एक साल तक कोई किराया नहीं होगा। या फिर ये होता है कि अच्छा आप ऐसा करें, किराया तो चल रहा है 20,000 रुपये, 5,000 रुपये दे देंगे। तो कर्ज देने वाले को फायदा पहुंचाया गया कर्ज की बुनियाद पर। अगर ये बयाना वही देता 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो मार्केट में राइज है, तो ये बेनिफिट दिया जाता या नहीं? नहीं दिया जाता। तो ये बेनिफिट कर्ज की बुनियाद पर दिया जा रहा है। शरीयत में अर्शद काल मौजूद है। मदीना मुनव्वरा से मुझे एक बुजुर्ग ने फोन किया, बुजुर्ग इन माना में वो 40 साल हो गए मदीना मुनव्वरा रहते हुए, पाकिस्तानी है। गुज़िश्ता 15 साल से तो मदीना से भी नहीं निकले थे, पिछले साल मक्का मुकर्मा को जरूरी काम था, जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी ऐसे काम हो रहा है, यही होता है कि वो कहता है कि जी पैसे ज्यादा दे दो, किराया इतना कम कर दूंगा, हल क्या है? तो उन्होंने एक सूरत बयान की ना, एक मिसाल बयान की। मैंने कहा ये जायज है, बिल्कुल जायज है। वो सूरत क्या बयान की? कहने लगे अगर मैं किराया, जो किराया बनता है ना, 3 साल का एडवांस दे दो, किराया एडवांस है। पहले आपसे ये समझें कि आज जो हो रहा है लाहौर में खासतौर पर, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, जो सूदी तरीका है कि 10 लाख रुपए जमा कराए, कितना होता है? 10 होता है, ज्यादा होता है, 10 लाख दिए, किराया बनता था 20,000, उसके बजाय 5,000 रुपये किराया मुकर्रर हो गया। जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो 10 लाख रुपए क्या होंगे? आपको दे देंगे। अगर ये तरीका ना हो, 3 साल का किराया आप उसको एडवांस दे दें, ठीक है, 10 लाख रुपए बनते थे, 3 साल का किराया 20,000 से कितना बनेगा? 2 लाख साल का बना, तो 2 × 4 = 6 और 7,20,000। आपने उसको कहा 7,20,000 3 साल का एडवांस किराया है, 3 साल बाद जब आप दुकान बंद करेंगे या एग्रीमेंट आपका खत्म होगा, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। और जो आप लोग कर रहे हैं उसमें वापस मिलते हैं? ये कर्जा कर्जा है, इसलिए वापस मिलते हैं। और एडवांस किराया तो हम दिन रात ही काम करते हैं, आप होटल बुक करते हैं, एडवांस जमा करवाते हैं। तो अगर कोई इस बुनियाद पर आपका किराया कम करता है कि मुझे 3 साल का एडवांस किराया दे दो, कोई हर्ज नहीं। यहां कर्ज नहीं पाया गया, यहां अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है बंदे का कि बंदा जब मेरे अहकाम आते हैं तो करेगा क्या। मैं सही अर्ज करता हूं, जब बंदा नेकी पर तैयार होता है ना, उसके लिए खुद ही राय खुल जाती है। तो मुतबादिल सूरत मौजूद है, इस तरह कर ले, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उलमा से पूछ कर करें। मैं एक मिसाल बाज़ोकात बयान करता हूं, अरबी का एक मुहावरा है, फर्रा मिनल मतरी कामा तहतल मिजाब। मिसाल के तौर पर बारिश थी, अरे कपड़े गीले हो जाएंगे, किसी चीज के नीचे खड़े हो जाते हैं, वो यहां आके खड़ा हो गया। ये था परनाला, वहां तो छींटे आने थे, यहां पूरा उसने भीग जाना है। तो बाज औकात आदमी किसी काम को सही करने जा रहा होता है, इतनी बड़ी गलती करता है कि उससे पहले वाली गलती से कई गुना ज्यादा हो जाती है। ये कब होता है कि जब वो अपने आप सोच रहा होता है यूं कर लूं, हाँ यूं कर लेता हूं, खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ। जिसकी फील्ड है उनके पास जाएं, उलमा से उलमा के पास बैठें, मशवरा करें, समझें। समझना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात بندہ سمجھ نہیں ہو رہا ہوتا, یہ ہمارا تجربہ ہے کہ پہلی دفعہ جب بھی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ذہن میں پہلے جھٹکا لگتا ہے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ذہن قبول کرتا ہے. ایک نفسیاتی معاملہ ہے, ایک فطرتی معاملہ ہے, نیچرل معاملہ ہے. تو کوئی بھی اس طرح کا نیا کام کرنے لگے رہنمائی لیں علماء سے. دوسری مثال, ایک تو مثال وہی ہے کہ جناب یہ بالکل مفت میں لے لو, دوسری صورت یہ کرایہ ادا ہو جاتا ہے. آج کل موبائل کمپنیوں نے ایک اکاؤنٹ شروع کروایا کہ جناب آپ 2000 روپے جمع کروا دیں ہمارے پاس, آپ کے اکاؤنٹ میں 2000 سے کم اگر ہوئے تو ہم آپ کو یہ سہولت نہیں دیں گے, 2000 رہے روز کے اتنے 100 فری منٹ ہے جناب, جو چاہے کریں آپ. بڑی مہربان ہوگی کمپنی ہے, 1,00,000 لوگوں سے 2000 جمع کرے گی تو کتنا پیسہ بنا؟ کیلکولیشن پلیز, کتنا بنا؟ 1,00,000 لوگوں سے 2000 روپے لے کے 2 کروڑ اس نے جمع کر لیے, اور پاکستان بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا, پتہ نہیں کتنا کروڑ روپے جمع ہو گیا اس کے پاس. تو وہ وہاں سے یہ پورا کرے گی, لیکن اس نے یہ 2000 روپے کسی تجارت کے بدلے میں نہیں لیے. یہ کیا ہے 2000 روپے؟ ہمارے کمپنی کے اوپر قرضہ ہے, قابل واپسی ہے, جب چاہے وہ گاہک نکال سکتا ہے. کچھ سیکورٹی ڈپازٹ بھی نہیں ہے یہ کہ جناب اس کا لینا ضروری ہے. یہ وہ تو بلنگ والے میں ہوتا ہے کہ جناب آپ اتنے پیسے جمع کروائیں تاکہ آپ کا بل جمع ہو جائے تو ہم کم از کم اتنا ہو کہ ایک مہینہ آپ کو مزید سہولت دے سکیں. یہ تو نہیں ہوتا بل والے اس کے اندر کہ جناب یہاں 30 تاریخ ہوئی ہے وہاں آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا ہو, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ایک مہینے کے انہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں, پھر وہ جب ایک مہینہ آپ مزید نہیں دیتے پھر وہ کنیکشن بند کرتے ہیں. یہاں تو 2000 روپے لینے کا مقصد واضح ہے, یہ قرضہ ہے ہمارا, ہماری رقم, مطلب ہمارے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی رقم ہے. قرضہ نہ دیتا تو یہ نفع نہ ملتا, پیسہ تو ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک بینیفٹ مل رہا ہے, روز کا اس بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ بینیفٹ سودی بینیفٹ ہے. اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے والا, فائدہ اٹھانے والا سود کا مرتکب ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کمپنی کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور چل رہا ہے جناب, حالانکہ ریگولیٹر جو ادارے ہیں ان کو کاروائی کرنی چاہیے, اتنا بڑا اماؤنٹ پبلک سے لیا جناب. آگے چلتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بہت کمزوری ہیں, بہت کمزوری ہیں. میں دبئی گیا تو ایک صاحب اپنی سائٹ پر مجھے لے کر گئے, بہت بڑا پروجیکٹ تھا ان کا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جیسے سے 5 منٹ میں ملتا ہوں نا تو اس سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں, اچھا یہ کام ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ مجھے معلومات حاصل ہوں. میری معلومات آج مجھے حاصل ہوں گی, ہو سکتا ہے اس کے متعلق کوئی آدمی 10 سال بعد سوال کر لے. میرا اپڈیٹ رہنا ان معنی میں ضروری ہے. ایک بڑی اچھی چیز مجھے پتا چلی, ہمارے کیا ہوتا ہے لوگ فلیٹ بک کرواتے ہیں, فلیٹ جا کے 5 سال میں بنتا ہے, بیچ میں بلڈر بھاگ جاتا ہے. وہاں کے گورنمنٹ نے کیا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر بلڈر سے معاہدہ کرتا ہے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے گورنمنٹ کے پاس, اور کسٹمر کی ساری رقم اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے فلیٹ بک کرایا 1 کروڑ روپے کا, ڈاؤن پیمنٹ دے دی 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ روپے بلڈر کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس آئے گی. بلڈر آئے گا گورنمنٹ کے پاس, جی میں نے کھڈا کھودنا ہے, محکمہ بندے بھیجے گا جب کیا کھڈا کھودنا ہے کہ نہیں, اور کتنے پیسے کی ضرورت ہے, اس اکاؤنٹ سے اتنے پیسے دے گی. اس نے کسٹمر کو سیکیورٹی دی ہے, یہ نہ ہو کہ بلڈر بھاگ جائے اور کسٹمر جو ہے وہ بےچارا روڈ پر آ جائے اور وہ روتا پیٹتا رہ جائے. ایک نظام قائم کیا ہے. تو جو ارباب اختیار ہیں, جو حکومت میں رہتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر حلال و حرام کا نظام بہتر بنائیں, جو حرام ہے اس سے لوگوں کو بچائیں, جو حلال ہے اس کو ترویج کریں, اور جو حقوق عامہ ہیں اس کا تحفظ کریں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا, میں اگر एक गाप को डील करता हूं तो मैं एक गाप का रिस्क लेता हूं कि भाई हो सकता है मैंने एक गाप पे तुश लेजे में बात कर ली हो, बदमजगी हो गई हो या लेन देन में कोताही हो गई हो। जो आदमी 10 लोगों से डील करता है वो 10 अफराद का रिस्क लेता है। तो यूं जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके जो हुकूक का ताल्लुक है वो उतना ही बड़ा होगा। आगे चलते हैं जनाब, करंट अकाउंट में जो हमारी रकम होती है क्या होती है? कर्ज होती है ना। अब मार्केटिंग की दौड़ जारी है, ग्राहक बनाने की दौड़ जारी है, अब निकले करंट प्लस अकाउंट। आप ऐसा करें, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए होंगे कम से कम, ऑनलाइन सर्विस हमारी मुफ्त, हम आपसे SMS अलर्ट चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आपके पास 5,00,000 रुपए जमा हुए हम आपको यह सहूलत देंगे मुफ्त, चेकबुक के पैसे नहीं लेंगे मुफ्त। अगर तो बैंक ये सहूलतें सबको देता है, जिसके अकाउंट में 1 रुपया ना हो, जिसके अकाउंट में 1,000 हो, 1,00,000 हो, 1 करोड़ हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कर्जे की बुनियाद पर देता है। अगर वो इस बुनियाद पर देता है कि इतने हजार हुए या इतनी अमाउंट हुई तो हम ये रकम आपको, ये सहूलियत आपको देंगे, अगर वो ऐसा कहता है तो ये क्या है? कर्जे की बुनियाद पर ये नफा दिया जा रहा है। और लोग जो है वो क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं है, देख रहे होते हैं जरा मालूम तो करो कौन सा बैंक क्या क्या सहूलियात दे रहा है। आप सोच से बचे हुए हैं, जब भी तो आपने करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। आपका मकसद क्या था? वो पैसे बुरे थोड़ी लगते हैं किसी को। आप उन पैसों से इसलिए बचे, सेविंग अकाउंट आपने कमर्शियल बैंक में इसलिए नहीं खुलवाया कि सूद मिलेगा, लेकिन यहां आपसे चुक हो गई। आपको समझ नहीं पड़ी कि आपको कैसे फंसा लिया उसने। अगर उलमा से दूर रहेंगे तो ये फंसने फंसाने का सिलसिला जारी रहेगा। उलमा से करीब रहें। हमारे जो रोजमर्रा की टाइमिंग है उसमें हम कितने लम्हे दीन को देते हैं, दीन सीखने को देते हैं। पहले होता था इस जमाने में सुबह का टाइम गली मोहल्ले से गुजरे तो कैसे लगी होती थी तिलावत की, नात की, अब तो वो भी सुनाई नहीं देती। वो दुकानदार भी व्हाट्सएप पे लगा होता है किसी से। कमी आई कि नहीं आई है सुबह का टाइम जो दुकानों पे पिस्ता की चीजें चलती थी गली मोहल्ले में, बहुत कमी आ चुकी है। तो दीनी सरगर्मियों में रोज बरोज कमी आती जा रही है। और जो हम मसले सुनते थे उलमा, आप एक बात नोट कीजिएगा, उलमा के पास उठने बैठने वाला, सोबत में रहने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला गलतियां करेगा लेकिन दिगर के मुकाबले में बहुत कम करेगा। बाद अवकात ऐसा होता है बंदे को सब कुछ पता होता है, ये जायज है ये नाजायज है, लेकिन फिर भी उसका नफ्स शैतान लालच गालिब आ जाती है। लेकिन बहरहाल एक बरकतें होती हैं, अपने आप को थोड़ा सा कुछ वक्त दें, 15 मिनट 20 मिनट, हफ्ते में एक दिन दे देते हैं उसको। मदनी मुजाकरा होता है अमीर अहले सुन्नत, सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। हमारे नफ्स पर भी आज होता है आपका, हमारे दिल पर भी निगाह होती है। दिल की बातें भी करते हैं ना, ये काम तो आप कर रहे हैं लेकिन आपकी नीयत सही है कि नहीं है? हमारे दिल को भी जो है ना वो खंगाल रहे होते हैं, हमें तरबियत भी दे रहे होते हैं। कम से कम इतनी नीयत करें तो मदनी मुजाकरा जिस दिन होता है, हर हफ्ते को होता है, मदनी मुजाकरा आप देखेंगे। इशा के बाद शुरू होता है, रात के 12 बजे तक जारी रहता है। आप खुद को करीब रखेंगे, यानी कितने ऐसे लोग हैं आप यकीन माने, मैं बहुत सारे अरब मुल्कों में गया हूं। मैं इराक में हाजिर हुआ, लोगों से पाक अध्यतनों की 11वीं शरीफ के मौके पर हाजिर हुआ था। कई अरबी मुझे मिले, नहनु ला नारिफ अय्या शैइन मिन उर्दिया वलकिन नहनु नरा शेख। हमें उर्दू नहीं आती, हम तो शेख को देते हैं, हम लोग भी जाते हैं वहां पर, यकीन मानिए। कई अरबी मुझे मिले। मैं पिछले दिनों ओमान गया, वहां कुछ अरबी मिले, हमें समझ कुछ नहीं आती, हम देखते हैं। मैं मुल्क में उलमा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ, बड़े बड़े उलमा दुनिया भर से आए हुए थे। कहने लगे कि समझ तो हमें नहीं आती कि नेल सेट अरब में चलता है या हमारे यहाँ एशिया सेट चलता है, नेल सेट चलता है, नेल सेट पर भी मंदिर चैनल मौजूद है। तो उनके यहाँ जब वो आगे पीछे करते हैं चैनल तो आता है, रुक जाते हैं। लेकिन शेख जब आ रहे होते हैं तो हम रुक जाते हैं। शेख के अंदर ऐसी कोई बात है कि दिल ही नहीं करता है आगे जाए। अब हम थोड़ा रिवर्स जाते हैं, एक मिनट, तीन चार बड़ी अहम मिसालें दे रही हैं, फिर रिवर्स जाएंगे। हमारी फ्रूट मंडियों में, सब्जी मंडियों में फ्रूट सब्जी ना आए हम क्या करेंगे? यानी हमारी एक बेसिक जरूरत है। उलमा ने एक बहस की कि तिजारत अफजल है या काश्तकारी अफजल है, किताबों के अंदर ही बहस हुई। तो अक्सर उलमा का रुझान इस तरफ था कि काश्तकारी अफजल, क्योंकि ये बुनियादी जरूरतों पर मुश्तमिल है। बाकी तिजारतें एक इजाफी चीज है, तिजारत से काश्तकारी अफजल है, अक्सर उलमा का ये रुझान था। तो काश्तकारी फ्रूट सब्जियां या हमारी बुनियादी जरूरत है, आटा हमें वहीं से मिलता है, गंदम का खाएं या मकई का खाएं वहीं से आएगा। खाने की चीज मस्कुनी तो कभी पैदा ही नहीं हो सकती, ये जो दवाइयां हम खाते हैं गोलियों की शक्ल में ये भी कुदरती चीजों से ही बनती है। इन मार्केटों में भी सूद आ चुका है, आर्थिक बाउंड करता है किसान को, किसान को पैसे चाहिए होते हैं, हाँ मैं कर्जा देता हूं, वो भी अपना बैंक खोल के बैठा होता है, ये ले लो 5 लाख रुपए, अच्छा दवा खरीदनी है, खाद डालनी है, ये 10 लाख रुपए ले लो, वो वापस कुछ नहीं लेता, 10 लाख ही वापस लेता है, लेकिन कहता है फसल मेरे पास बेचनी पड़ेगी, कहीं और नहीं बेचनी तुम। तो जो उसने बाउंड करके फायदा उठाया उसकी बुनियाद क्या है? कर्जा। अगर कर्जा ना दिया होता तो वो किसान तो चौड़ा होके मार्केट में आता कि पहले मैं जरा देखूंगा रेट कौन अच्छा दे रहा है मुझे। अब वो बाउंड हो गया, ना उज्जत कर सकता है, ना इससे वो तकरार कर सकता है, सोचेगा चलो पैसे तो मिलने, अगले दफा पैसे नहीं देगा अगर मैंने कुछ किया तो। कर्जे की बुनियाद पर नफा दिया गया, किसान से जिसको बेनिफिट हासिल हुआ कर्जे की बुनियाद पर हासिल हुआ, सूदी मामला ही। आगे चलते हैं, अब रिवर्स आते हैं। हम थे कहां पर थे हम जनाब? सूद की दो अकसाम, पहली किस्म कौन सी? कर्ज के बदले हासिल होने वाला सूद, इसकी गुफ्तगू कंप्लीट हो चुकी है। कर्ज से हासिल होने वाला सूद, दूसरी मखसूस अशिया के तबादले पर हासिल होने वाला सूद, इसकी हमने दो किस्म की थी। इसका नाम है रिबल फजल, जो भी हमने पढ़ना है, जो भी हमने जानना है। अब तक हमने जो सुना वो ये सुना कि कर्ज के बदले में कहां कहां नफा मिलता है और सूदी मामला है। अब जो दूसरी किस्म है मखसूस अशिया के तबादले के बदले सूद का मिलना, ईद के मौके पर नए नोट आते हैं, बंदा जाता है दुकानदार के पास कि जनाब 20 रुपए वाले 100 नोट चाहिए, इसको 100 नोट की गड्डी चाहिए, क्या बोलते हैं लॉर्मल, उसको सस्ती बोलते हैं गड्डी बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं। उसकी मालियत है 2000 रुपए की, उसकी मालियत कितनी है लेकिन वो व्यक्ति कितने की है? 2200, 2500। ये हलाल भी हो सकती है, हराम भी। क्या हो सकती है? दूसरी वाली किस्म के अंदर तफसील है। क्या है? तफसील है। अभी तक जो मैंने बातें आपके सामने बयान की हैं, मैं समझता हूं मुश्किल बातें नहीं थी, वो बातें थी जो आसान थी। अब मैं ये चाहता हूं कि जो दूसरी वाली किस्म है मैं उसका फार्मूला आपको सिखा दूं। कि हलाल कब होगी या हराम कब होगी। पहले तो मैं दो मिसालें बयान करता हूं। किसी दुकानदार ने कहा कि ये अच्छा ठीक है, ये गड्डी ले लो 20 वाली और 2200 रुपये दे दो। उसने जेब से पैसे निकाले, उसको दिए, गड्डी ली, जेब में रखी, चला गया। ये जायज है। क्या है ये? जायज सूरत। दूसरी सूरत कि ये दुकानदार के पास आया, हाँ भी कितने की है? कहने लगा कि जी वो 2500 की है। अच्छा ऐसा है, हफ्ते बाद पैसे भिजवा देता हूँ, ये शाम में भिजवा देता हूँ। मार्केटों में शाम कहना तो उधार समझा नहीं जाता ना। गड्डी उठाई चला गया, ये सूद। फर्क बारीक है। ये सूद क्यों हुआ, ये जायज क्यों हुआ, इसका जो फार्मूला है वो मैंने आपको समझाना है ताकि आप भूल ना जाए। मेरी सोच ये है कि माशरा इकाई से बनता है, और ये मेरी सोच नहीं है, मैंने प्यारे अकाले साधु सलाम से सीखा है। प्यारे अकाले साधु सलाम दुआ करते थे, ए अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब फरमा दे। फर्द के लिए दुआ करते थे ना, फर्द के लिए। एक एक बंदे को आप करीब लाते रहे, इस्लाम के नूर से महबूस कमाते रहे। आप 150-200 जो अफराद बैठे हैं, अगर इनको ये मसले पता चल गए, मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने एक फर्द को नहीं समझाया, 3 नस्लों को समझाया। आपके बेटे भी होंगे, पोते भी होंगे, या कम अज कम आपके दुकान पर काम करने वाले लोग भी होंगे। तो सिर्फ आपको फायदा नहीं पहुंचा, आपके जरिए 600 अफराद को फायदा पहुंचा। और मैं सोचूं कि नहीं, पाकिस्तान का हर आदमी ये काम करना शुरू कर दे, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, अमली सूरत नहीं हो सकती। इल्म इसी तरह फैलता है, और यही तरीका हमारे बुजुर्गों का रहा है। और माशरे में उस वक्त तक बड़ा बिगाड़ नहीं आ सकता जब तक गलती को गलती कहने वाले मौजूद हों। अगर ये अमल भी खत्म हो जाए ना, लोग कहेंगे गलती थोड़ी है, सही है। उलमा की यही जरूरत होती है। उलमा देख रहे होते हैं कि मैं बालों का मदनी ज्ञान पर कोई मसला ज्ञान करता हूं, ये तो खैर ऐसा टॉपिक है, इसमें आप सबको समझ में आ रही है। मेरे दिल में ये बात पैदा हो रही होती है कि इतना मुश्किल मसला है, यानी इसका जो हुक्म है बड़ा सख्त है। लोग बोलेंगे कि हम कैसे अमल करें, कोई कारोबार बंद कर दें। लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मुतमिन होता हूं, मुझे पता होता है लोगों के 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? एक वो होता है जो फौरी छोड़ देता है, सुनता है फौरी छोड़ देता है। एक वो होता है, इतना अच्छा ये गलती है, उसे तो बचना ही पड़ेगा, छोड़ने का सोच लेता है कि मैं छोड़ूंगा इसको, मालूम हुआ तो उसने ये सोचा। एक वो होता है जो तैयार करके बैठा होता है, नहीं मैंने नहीं छोड़ना। ये भी एक दिन आता है उलमा के पास, बहुत परेशानी आ रही है, कारोबार बिल्कुल बैठ चुका है, लगता है जो ना मैं जो ये काम करता था ये उसी का नतीजा है। आप बताएं सही कैसे हो सकता है? तो इल्म जो है उसकी बरकतें होती हैं, बेपना बरकतें होती हैं। इल्म की इतनी अहमियत है कि नफल नमाज पढ़ने से अफजल है इल्म सीखना। नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो बंदे को हराम से बचाता है। क्या अल्लाह ताला के नाफरमान को अल्लाह का कुर्ब मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। फरमा बरदार को कुर्ब मिलेगा। फरमा बरदार कब बनेगा बंदा? जब उसको पता चलेगा ये सही ये गलत। एक मिसाल मैंने आपके सामने बयान की कि नोटों में 2 सूरतें पाए गए, एक जायज एक नाजायज। क्यों ऐसा क्यों हुआ ये अगले स्टेप में मैं समझा रहा हूं। फिलहाल कुछ मिसालें। आजकल हमारे मार्केटों में क्या है, कि गवर्नमेंट ने कैश पर टैक्स लगा दिया, 1,00,000 रुपये पर 600 रुपये कटेंगे। चेक आया आपके पास? तो या एक आदमी जा रहा है बैंक में, आपसे मुलाकात हो गई, हाँ भी कहाँ जा रहे हो, मुझे पैसे कैश करवाने, मेरे पास है ना कैश, मुझे 400 रुपये दे देना। तुमने बैंक से काट देने ही देने बैंक को, भाई बैंक को जो देने वो बैंक ने तो नहीं रखने ना, वो तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, टैक्स लेना गवर्नमेंट का जायज है। गवर्नमेंट टैक्स ना ले तो हमारे सड़क कैसे बने, पुल कैसे बने, बल्दिया कैसे चले, फौज को पैसा कहाँ से मिले, पुलिस को कहाँ से मिले, स्कूल में टीचर कहाँ से आए, जिला हॉस्पिटल कहाँ से चले, मेयू अस्पताल कहाँ से चले। गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो गरीबों को कुछ फायदा पहुँचता है, ठीक है, वो बहुत सारे जो है वो रास्ते में मौजूद हैं लोग ख्यानत करने वाले, अल्लाह ताला के जवाब दें। टैक्स रियासत की जरूरत है, हमें बहसीत ताजिर पाकिस्तान में रहते हुए इस बात को समझना होगा, यूके में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए तो सब समझते हैं। 40% तक टैक्स देता है वहां पर ताजिर, लेकिन अल्लाह करे हमारे मुल्क में ऐसा निजाम कायम हो कि दयानत की सजा है, हमारा जो भी पैसा यहां जाता है वो सही जगह पर खर्च हो, लोगों की जेबों में ना आए। तो बैंक ने तो टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे देने थे, लेकिन आपने कौन सा एग्रीमेंट किया, आपने पैसे के बदले पैसे को बेचा है, 1,00,000 रुपए उसको कैश देके 400 रुपये ज्यादा लिए, सूद की दूसरी सूरत है। एक और सूरत, एक चेक ऐसा है कि 15 दिन बाद का है, दे दिया जनाब कस्टमर ने 15 दिन बाद का चेक, उसने भी ले लिया कि चलो ठीक है हमारी डील ही जब 15 दिन बाद की हुई है ले लेता हूं। अब उसको पैसों की जरूरत पड़ गई और मिसाल के तौर पर 10,00,000 रुपये का चेक है, अब वो जाता मार्केट में, यार ये चेक है मिसाल करो 5,000 रुपये काट लो मुझे कम दे दो, ये भी वही सूरत है, पैसे को पैसे के बदले बेचा गया और उस पर जो है उसको नफा दिया गया, ये सूद की सूरत है। ट्रक अड्डों पर क्या होता है कि ट्रक वालों को चेक मिलते हैं, ट्रक आया जनाब पिशावर से लाहौर, सेब लेकर आया, वो आरती ने चेक दे दिया ये लो जी किराया आपका, और वो जो चेक है वो 3 दिन बाद का है, उस ड्राइवर ने वापस भी जाना है, पेट्रोल भी डलवाना है, वो चेक के चक्कर में कहां पड़ेगा। तो यहां असल में जुल्म है, आपने उसके साथ गलत किया, तो आपको पता है इसने वापस जाना है, उसको आप आज का चेक दें या उसको कैश अमाउंट दें या उसकी कंपनी को ये कहें कि हम ऑनलाइन करवा देते हैं, पहले से बता दें ताकि वो ड्राइवर को खर्चा देकर भेजे। अब वो चेक लेके ट्रक अड्डों पर छोटे छोटे लोग बैंक रख के बैठे होते हैं, कैश रख के बैठे होते हैं, इस तरह के चेक खरीद रहे होते हैं, इनके जबान में बोलते हैं बिल्टी खरीदना, ठीक है चेक ले लिया 50,000 रुपये का है, उसको 1,000 रुपये कम दे दिया, ये भी वही सूरत है, पैसे के बदले पैसा बेचा गया है। और एक सूदी मामला है, कारोबारी दुनिया के अंदर LLC खुलवाई जाती है, किसी ने जो है वो माल बनवाकर भेजा, आपके लाहौर में क्या प्रोडक्ट तैयार होती है, कराची में तो टेक्सटाइल जो है वो छाया हुआ है, यहां क्या तैयार होती है जो बाहर जाती हो, बहुत सारी मेरे इल्म में भी आ जाएंगे। अच्छा बाहर जाता है, इतना तो मुझे पता है कि पाकिस्तान से जितने बकरे अमारात में जाते हैं ना, शायद वो कोई चीज जाती हो। तो अब क्या हुआ कि कोई माल आपने भेजा, उस पार्टी ने बैंक गारंटी ली और आपके नाम LLC खुलवा ली, LLC में ताजिर मुतमईन हो जाता है, उसका पैसा डूबता नहीं, बैंक 90 दिन के बाद देने का पाबंद होता है, वो पार्टी अगर नहीं भी देगी तो बैंक उसको देता है। फिर जरा ये समझें कि बैंक क्यों देता है, पार्टी ने नहीं भी दी तो बैंक देगा। बैंक जो ये काम कर रहा है, ये कोई नया काम नहीं है, ये हमारे फिक में लिखा हुआ है तरीका, पूरा चैप्टर है हवाले का। एक आदमी जो है वो उसने पैसे देने हैं, वो जामिन लिया है और वो आकर कहे इसने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, जायज है, पूरा तरीका लिखा हुआ है। तो बैंक उस पार्टी का, चाहे ना जो आपका माल जा रहा है या बाहर माल जा रहा है या यूके जा रहा है, वो पार्टी एलसी करवा देती है बैंक के साथ, ठीक है 90 दिन बाद पैसे ले लीजिएगा। अब अमाउंट बड़ी होती है, आपका पूरा कंटेनर गया होता है, पार्टी बैंक से डीलिंग करती है कि जनाब ऐसा करें कि मेरे ये 50 लाख रुपए आए हुए हैं, आप 1 लाख रुपया रख के 49 लाख में दे दें, 90 दिन बाद आने मेरे पैसे, या मैं आपसे कानूनी तौर पर 90 दिन बाद तकाजा कर सकता हूं, डील कर लेते हैं। क्या पाया गया? पैसे के बदले पैसे की डील पाएंगे। जिस जमाने में डॉलर महंगा हो रहा था, एक्सपोर्टर जो है वो परेशान हो गए थे, तो एडवांस में डॉलर बुक होना शुरू हो गए, वो भी सूद की सूद थी। सुनार मार्केट के अंदर दो तरह के काम होते हैं, एक तो आम कस्टमर जेवरात बनवाता है, वो कैश पर काम करता है, पैसों पर करता है, उधार भी सोना उधार भी बेचना जायज है, सोना उधार बेचना भी जायज है। लेकिन एक काम हो रहा होता है दुकानदार का और कारखानेदार का, ये दोनों पैसों में मामला नहीं करते। टोटल 98% ये सोने के बदले काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर दुकानदार ने 100 ग्राम सोना दिया, किसको? कारखानेदार को, कि जेवर बना के दे दो। वो अगर पैसे ले ले, रुपया ले ले, तो ठीक है इतने जो है वो पैसे मैं लूंगा आपसे, तो जायज है। वो कहता ठीक है सोना तो मुझे दो और सोना ही लूंगा मैं आपसे। तो वापसी में वो क्या करता है कि 100 ग्राम के बजाय 90 ग्राम वापस करता है। ये सूदी सूरत है। क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं। गंदम की मिसाल मैं दे चुका हूं कि किसी ने 50 मन गंदम ली और कहा कि 60 मन मुझसे ले लीजिएगा या 60 मन ले लो, हाथों हाथ ले लो, तो ये भी सूदी सूरत है। अब हमने जितनी गुफ्तगू की है, आइए उस पर नजर दौड़ाते हैं। सूद की अकसाम, दो अकसाम, कर्ज और उधार वाला सूद, मखसूस अशिया के तबादले वाला सूद, इसकी कितनी किस्में, कर्ज के बदले नकदी में नफा मिलता हो और कर्ज के बदले बेनिफिट मिलते हो, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ 3 जुमले मुश्किल होंगे फिर आसान है। तैयार है जनाब? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक दफा और रिक्वेस्ट करता हूं, दुरूद पाक तो पढ़ ही लें, एक दफा अगर खड़े होकर बैठ जाएं थोड़ी सी तमाना ही आ जाएगी। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं सुनाने नहीं पढ़ाने आया हूं। सूद की दो किस्में हैं, अब थोड़ा सा मुश्किल लग, एक रिबन नसीहा, दूसरा रिबन फजल। कर्ज वाली सूरत रिबन नसीहा की है और जो दूसरी सूरत है वो रिबल फजल की है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की एक हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अतः उबादा बिन सामित से बात करते हैं, कला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, सोने के बदले सोना, वलफिद्दतु बिलफिद्दति, चांदी के बदले चांदी, वलबुर्रु बिलबुर्री, गंदम के बदले गंदम, वशईरु बिशईर, جو کے بدلے جو، تمر بالتمر، کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے نمک، مثلا بالمثل. جب بھی یہ معاملہ کرنا ہو، جنس ایک ہی ہونی چاہیے، برابر ہونا چاہیے، تساوی ہونی چاہیے، سوان بسوائن برابر ہونی چاہیے، یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے، ادھار نہیں ہونی چاہیے. جب یہ اصناف بدل جائیں، فبیو کے فشے تم، پھر جتنا چاہو بیچو. ایک سود وہ ہے جو قرآن نے حرام کیا، ایک سود وہ جو حدیث نے حرام کیا. یہ میں نے وہ حدیث بیان کی ہے جس نے کچھ چیزوں کے تبادلے میں سود بیان کیا ہے. چھ چیزیں بیان کی گئی یہاں پر، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک. اگر سونے کے بدلے سونا ہے تو کم زیادہ نہیں ہو سکتا، ادھار بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو چھ چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. اب علماء نے ان چھ چیزوں سے ایک اصول نکالا اور دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل کر دی. اس اصول کا نام ہے جنس اور قدر. اب میں نے آپ سے کہا ایک فارمولہ آپ کو سمجھانا ہے، اب میں وہ سمجھانے لگا ہوں. کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، جی یہ بتائیں، ایک آدمی فروٹ خریدتا ہے، پیسے دیے فروٹ لیا، تو کیا ہوا؟ پیسے ایک الگ چیز ہے، فروٹ ایک الگ چیز ہے، دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہیں نا. کوئی یہ کہے گا کہ فروٹ اور پیسے ایک ہی جنس ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں. تو جنس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز جہاں ہو، ایسی خرید و فروخت ہو بارٹر سسٹم پر کہ یہاں سے بھی وہی چیز ہے، وہاں سے بھی وہی چیز ہے. اس کی ایک مثال کیا، کھجور، وہاں سے بھی کھجور، یہاں سے بھی سیب، وہاں سے بھی سیب. آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ تشریف رکھیں. تو ایسا ہوتا ہے، اگر نہیں بھی کوئی کرتا ہو تو مسئلہ تو سمجھ لیں. وہ جو نئے نوٹ اور پرانے نوٹ والا مسئلہ ہے وہ یہیں سے حل ہونا ہے. اسی فارمولے سے آپ کو پتا چلنا ہے جائز صورت کون سی ہے، ناجائز صورت کون سی ہے. وہاں کیا صورت تھی؟ ایک طرف سے نوٹ، دوسری طرف سے بھی نوٹ، جنس اور جنس. ٹھیک ہے جی، ایسا تبادلہ جس میں دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہوں. گائے اور بکری ایک ہے، الگ ہے؟ جانور ضرور ہے لیکن ریٹ تھوڑی ہے، دونوں کا ایک ہے. بکری الگ جنس ہے، گائے الگ جنس ہے. بکری اور گائے کا تبادلہ اگر ہوگا، ایک جنس کا تبادلہ ہوگا یا الگ جنس کا ہوگا؟ الگ جنس کا ہوگا. ایک تو چیز اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنس کو سامنے رکھا جائے کہ کہیں جنس ایک ہے کہ الگ ہے. ایک پہ اور حکم ہوگا، الگ پہ اور حکم ہوگا. پلس کرنا ہے قدر کو. قدر کا انگریزی میں ترجمہ ہے میجرمنٹ. کیا ترجمہ ہے؟ اور اردو میں کہتے ہیں پیمانہ. جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو دو طریقے سے ڈیل ہوتی ہے، یا تو لاٹ کے حساب سے ہوتی ہے. کس کے حساب سے ہوتی ہے؟ وہاں میجرمنٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، بھائی لاٹ پوری خریدنی. آپ دوسری کس حساب سے ہوتی ہے؟ تول کر ہوتی ہے. ترازو تو آج کی یاد ہے نا، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ماپ یا ناپ، ماپ کر. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اب آپ بڑے بوڑھوں سے پوچھئے گا، گاؤں کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز بیچنے آتا تھا گاؤں دیہاتوں میں، ہاں بھی کپڑے والا آیا ہے یا کوئی کلفی والا آیا ہے، پیسے نہیں ہیں، دانے لینے دینا اس نے، تو ایک ہانڈی میں طے ہوتا تھا جی اتنے دانے دے دو. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے. ترازو آنے سے پہلے ماپ کر چیزیں دی جاتی تھی. تو دوسرے طریقوں کو کیا کہیں گے؟ پہلا طریقہ تول، دوسرا طریقہ کیا کہلائے گا؟ اردو میں ماپ، عربی میں کیل. عربی میں کیل. यहाँ एक थोड़ी सी पेचीदगी है, हमारे लेन देन में एक तीसरी चीज भी होती है। मदीना शरीफ कौन कौन गए? केले गिन के मिलते हैं या तोल के मिलते हैं जी? केले तोल के मिलते हैं, हमारे यहाँ कैसे मिलते हैं? गिन के मिलते हैं। तो एक तीसरी चीज भी होती है, बहुत सारे आइटम क्या होते हैं, मोबाइल का भी सुना है कि तोल के बिकता हो, पर पीस बिकता है। सोच की दूसरी किस्म हम समझ रहे हैं, बस ये बात समझ जाए तो अगली बात समझ के कहेंगे मौलाना साहब ये सिरे का क्या उसूल है। जो सूद की दूसरी किस्म है उसमें इसका एतबार नहीं किया गया, इसका एतबार नहीं किया गया। नोट क्या है? हैं? अददी है ना, गिन के बिकते हैं। तो वो जो मैंने कहा था ना कि अगर ये पैसे दे देता है 2200 रुपए और 2000 रुपए गड्डी ले लेता है नगद, तो ये जायज है। वो इसलिए बयान किया कि नोट के बदले नोट जिंस एक पाई गई या नहीं पाई गई, लेकिन ये पाई गई सूरत, ये पाई गई। शरीयत ने इस किस्म में सूद पाए जाने के लिए दो चीजें लाजिम की हैं। अगर ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे, क्या नगद इजाफा भी आराम और उधार भी आराम, क्या जैसे किसी ने गंदम बेची गंदम के बदले जिंस पाई गई बेचना, जिंस एक ही है, गंदम तोल के बिकेगी या फिर वजन से बिकेगी, ऐसा ही है ना, इसमें तो नहीं आ रही ना। अब ये जरूरी है कि अगर कहीं ऐसा सौदा होता है तो कमी बेशी नहीं हो सकती, कमी बेशी हुई सूद हो जाएगा, उधार हुआ सूद हो जाएगा। किसी ने एक बकरी बेची दो बकरियों के बदले, दोनों की जिंस एक है, ये पाया गया, ये पाया जा रहा है ना, ये नहीं पाया गया। नकद बेच दे, ये एक बकरी ले लो दो बकरी दे दो चला जाए, उधार करेगा तो हराम हो जाएगा। इस कायदे की चार सूरतें हैं, कितनी सूरतें हैं? हाँ, अब आप अपनी बुक खोलें। पहली सूरत जिंस एक हो, कदर एक हो, 29 जिंस एक हो और कदर भी एक हो। हुक्म बयान नहीं कर रहे अभी हम हुक्म बयान नहीं कर रहे, उसका हुक्म जायज है ना जायज है। यह अर्ज कर रहा हूं कि यह मसला, इस मसले कोई पांचवी सूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, इतनी मुश्किल चीज कौन समझेगा, सिर्फ चार चीजें समझेंगे। जिंस एक हो, कदर भी एक हो, तो फिर किस चीज की बनी हुई है? गंदम के बदले गंदम। दूसरी सूरत जिंस एक हो, कदर मुख्तलिफ हो, घोड़े के बदले किसी घोड़ा बेचा, यार तो आपका घोड़ा बड़ा अच्छा है, मेरे घोड़े से तबादला कर लो। जिंस एक है, इसकी जो वो है कदर पाई जाती है उसमें, जिंदा घोड़ा तो कोई नहीं बिकता तोल कर। तीसरी सूरत जिंस मुख्तलिफ हो, बाटर सिस्टम, किसी ने चीनी खरीदी गंदम देकर, दोनों के जिंस से अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का वजन एक है, केल पाया गया। चौथी सूरत जिंस भी अलग हो, कदर भी अलग हो, जो आप आमतौर पर हम खरीद फरोख्त करते हैं यही होता है, पैसे देते हैं मोबाइल खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं सोना खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं गाड़ी खरीद लेते हैं। ये चार सूरतें बनी, इन चार सूरतों में से कौन सी जायज कौन सी ना जायज, अगले पेज पर। जब जिंस भी एक हो और कदर भी एक हो, आप ना पेज नंबर 29 पर रहे, अगला पेज यहां से देख लेंगे। जिंस भी एक और, तो फिर किस चीज की है? ठीक है, अब इसका हुक्म क्या है? उधार करेंगे हराम हो जाएगा, कहा ये गंदम ले जाओ, अपने गंदम कल दे देना, उधार करेंगे हराम हो जाएगा। या गांव देहातों में जो होता है ना, आटा खत्म हो गया पड़ोसी से ले आओ, ये कर्जा है। क्या है ये जायज है। खरीदो फरोख्त हो रही है तो वो नाजायज होगा। देख पहले जमाने में सोने चांदी की अशर्फियां होती थी ना, हैं? नोट तो नहीं थे तो लोग कर्जा किस चीज में लेते थे? अशर्फियों में लेते थे। तो कर्जा मैं समझा चुका हूं ऐसी चीज नहीं होती इसको संभाल कर रखा जाए। कर्जा लिया जाता है जरूरत पूरी करने के लिए, तो गंदम में कर्जे में ली जा सकती है। ये खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। उधार हुआ तो सूद, गंदम 10 मन दूसरी तरफ से 11 मन क्या हुआ कमी बेशी, ये भी सूद हो जाएगा। आगे चले, जिस एक हो कदर मुख्तलिफ हो, जिस एक हो जैसा कि नोट, नोट के बदले नोट बेचना तो क्या हुक्म होगा? उधार हराम है हाथों हाथ जाए। नोट में कदर पाया गया? नहीं पाया गया ना, क्योंकि ये तराजो केल वाला नहीं है। हाथों हाथ अगर एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम है, नकद अदायगी होगी दो तरफा, तो ये जायज है। ये घोड़ा देख रहे हैं, ठीक है, किसने कहा कि ये दो घोड़े के बदले एक घोड़ा दिया, फौरन सौदा हो जाए हाथों हाथ जायज है। आगे चलते, जिस मुख्तलिफ हो कदर एक हो, ये देखें मिसाल गंदम और चावल दोनों एक ही माप से बिकते हैं ना, तौल कर बिकते हैं, लेकिन जिनसे अलग हैं। एक ने कहा कि जी 1 मन गंदम के बदले मुझे 5 मन जो है वो चावल दे दो, क्योंकि इसके अंदर ये गलती ज्यादा होती है हमारे माशरे में, पहली बार सोच नहीं पाई जाती, ये ज्यादा पाई जाती है। चूंकि इसके अंदर जिन्स तो नहीं पाई जा रही, लेकिन कदर एक पाई जा रही है, दोनों का तोल एक है। हाथों हाथ कर ले नगद नगद, उधार करेगा तो हराम हो जाएगा। आगे चलो, चौथी किस्म, जिन्स भी अलग कदर भी अलग। हदीस पाक में फरमाया गया फबीउ के फशेतु, ये से चाहते हो बेचो। मोबाइल सोना, पैसा सोना, पैसा कोई और चीज जी। सेकेंड लास्ट स्लाइड, खुलासा निकालते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सूद की दो अकसाम, पहली किस्म रिबन नसिया, कर्ज के बदले या उधार की बात सूरतों के बदले नफा दिया जाता है, ठीक। दूसरी रिबल फजल, कुछ अशिया के बाम तबादले पर सूद पाया जाता है, और जब ये पता चलेगा जिन्स और कदर का मामला क्या है, हम फार्मूले को समझ जाएंगे। एक बात मेरी तवज्जो सुने, मेरी तरह तवज्जो करें, फार्मूला समझना असल नहीं है। असल यह है कि आप एक काम कर रहे हैं, आपको पता चले कि यह हलाल है या काफी है। तो मैंने यूं बयान कर दिया कि इसके बयान करने से हो सकता है आपके लिए थोड़ा मसला जानना और आसान हो जाए। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसको माइनस कर दें, क्योंकि इस तरह का मामला कम होता है, गांव जातों में ज्यादा होता है, शहरी जिंदगी में कम होता है। आगे, ये बड़ा अहम नोट है, ये बड़ा अहम नोट है कि तो सूद की दो किस्में, एक तीसरी किस्म भी है जो मैं आज नहीं सिखा रहा, दर्जनों किस्म की चीज पाए जाते हैं, दर्जनों किस्म की। यह मत समझिएगा कि हमने सूद को समझ लिया है। सूद की मोटी मोटी दो किस्में समझ ली हैं, तीसरी किस्म बड़ी बारीक है, उसका समझना भी बाकी है। आगे चलते, सूद ले लिया हो तो क्या किया जाए? बाद लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, हमारी तो सैलरी जो है वो आती रही उसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर। या कुछ लोग वो होते हैं जिनके दिल में एहसास बेदार होता है, वो कहते हैं हम ये अकाउंट खत्म करेंगे। पूछते हैं अब जो रकम आ गई उसका क्या करें? उसका हुक्म ये है कि ये नापाक रकम है, हराम की रकम है। बाद लोग कहते हैं मस्जिद के बाथरूम में लगा दो। अल्लाह के बंदो, मस्जिद के बाथरूम में लगाना भी सवाब का काम है, वो क्या नाजायज काम है? हैं? मस्जिद के बाथरूम में लगाना भी सवाब का काम है, वो जगह ठीक नहीं है, मान ही ना सकता। बगैर सवाब की नियत के ये नियत करनी है, ए मालिक मैं तोबा करता हूँ, ये रकम मेरी गलती से आ गई, मैं अब इससे निजात पा रहा हूँ। ये नहीं कहेंगे कि जनाब सेठ साहब ने रखवाया हुआ 1 करोड़ रुपया और यहां बने हुए जनाब क्या बने हुए हैं, सखी बने हुए हैं, गरीबों को बांट रहे हैं। पैसा सूद का अल्लाह ताला की बारगाह में हराम माल पेश करके सवाब चाहते हैं, कैसे मुमकिन? उससे खुलासे हासिल करनी है, सवाब की नियत नहीं करनी। जो भी मुस्तहिक ज़कात हो उसको दे दे, ये उसके खुलासे का तरीका है। खुलासे समझ लीजिए जनाब, खुलासा आप पहले समझ चुके हैं, खुलासा भी समझ लिया, खुलासे भी समझ ली। अल्लाह अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना है इस मामले की तौफीक अता फरमाए, और मैं बहुत दर्द दिल के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हूं, हमारे जहनों में कोई माइनस बात पैदा ना हो। ये शैतान का एक हमला होता है कि नहीं मौलवी साहब ने ये क्या बयान कर दिया, या वो बात बड़ी मुश्किल बयान किया, कुछ समझ ही नहीं आई। आप अगर ये कहेंगे कुछ समझ नहीं आई, ये एक हकीकत है। गिलास में आधा पानी है, हैं, और आधा गिलास खाली है, ये दो अलग अलग जुमले हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं वहां शरीक हुआ, मैंने 4 बातें सीखी हैं, बातें तो 20 सिखाई गई थी, मैं 4 बातें सीख के आया हूं, तो ये वो अंदाज होगा जो आपकी तबीयत पर अच्छे असर डालेगा। दूर दबा पढ़ लीजिए, हमारे दारुल इफ्तार सुन्नत के उलमाए इकराम हैं, इनको बतौर खास मैंने बुलवाया कि मुफ्ती साजिद साहब इशरा के दारुल इफ्ता में होते हैं, माइक दें भी, इशरा का दारुल इफ्ता कहाँ है?
इशरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, ये इशरा में गोल्ड मार्केट है, तो वहाँ पे लतीफ प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पर इशरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम है।
मुफ्ती अहमद साहब, दाता सरकार के कदम ऐन शरीफ़ैन की जानिब जो पहली गली आती है जूस वाली, उस जूस कॉर्नर वाली गली में दावत इस्लामी की बिल्डिंग है, मकतबतुल मदीना के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक इसकी टाइमिंग है।
दारुल इफ्ता में ये हजरात मौजूद होते हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे, आप कभी आएंगे दारुल इफ्ता में मुझसे पूछने की कोई पैसा नहीं है। आप कहेंगे लिख के दे दे, लिख के देंगे, लिखने में दो तीन दिन लेंगे आपसे, लेकिन ये होगा कि कभी भी आप चले जाते हो। कातेकार क्या है?
सुबह 9 से शाम 5 बजे तक।
आपके यहाँ?
हमारे यहाँ 11 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइमिंग है।
यानी जिस तरह एक गली मोहल्ले में क्लिनिक खुला होता है ना, तो बंदा बीमार है डॉक्टर के पास जाएगा, तो ये दारुल इफ्ता और मसाइल पूछने की जगह उससे ज्यादा हमारे लिए है, ये मौजूद है, आप ज्यादा इस्तेफादा करें।
संडे वाले दिन छुट्टी होती
है, जुम्मे को दिन खुला होता है। आपने अभी
जुम्मे को खुला?
क्वेश्चन आंसर।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि प्राइवेट कंपनीज में प्रोविडेंट फंड एक होता है, उसमें यह होता है कि 8% 5%, मतलब 8% हमारी सैलरी से काटा जाता है और 8% एक्स्ट्रा कंपनी डालती है और साल के बाद वो मिलता है, तो जो एक्स्ट्रा कंपनी डालती है क्या वो सूद में है? नहीं, नाजायज है।
जो कंपनी डालती है वो आपके एग्रीमेंट का हिस्सा होता है, यानी आपको सैलरी दे दी मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये कैश आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दी, और 8% वो आपको अलग से जमा कर रही है, आपके एग्रीमेंट में होता है कंपनी ये करेगी, वो उजरत का हिस्सा है। जो पैसे प्रोविडेंट फंड में कंपनी डालती है वो हलाल है, वो आपके हैं, लेकिन वो जो पैसे बैंक में इजाफी जमा हो जाते हैं वो हलाल नहीं है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने और आप आपके तनख्वाह से कट के जो भी जमा हुआ वो जमा हुआ 5 लाख रुपये, 2 साल रहने पर 20,000 रुपये जमा हो गए, जो बैंक का इजाफा होगा वो सूद होगा।
एक दूसरा सवाल, कंपनी में जो मतलब वो जॉब ऑफर लेटर होता है उसमें ये होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दी जाती है, और बाद में डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं, आईडी कार्ड वगैरह वो खुद ही प्रोसीजर करवाते हैं, तो उस एग्रीमेंट पे जो साइन करता है बंदा, क्या साइन
जो करता है उसको बेनिफिट मिलते हैं? नहीं करता, नहीं मिलते, ठीक है, जबर नहीं है, करा नहीं है, आपने करना ही करना है। जहां जबर है, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, आप ये काम करवाएं, वो अलग सूरत है। जहां आप ऑप्शनल है तो वहां कैसे गुंजाइश हो। नेक्स्ट प्लीज।
जज़ाकअल्लाह।
वालेकुम सलाम।
जो खलासी हासिल करने के लिए रकम अदा की जा रही है, जिसको अदा की जा रही है, अगर वो पूछ ले कि ये कौन से पैसे हैं, तो फिर क्या उसे फरमाए कि कौन से पैसे हैं?
उसको गिफ्ट कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, कि उसको एहसास ना हो। जो ज़कात के बारे में फुकहा ने लिखा है कि अगर आप ज़कात कहेंगे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी, ऐसे मौके पर आप तोहफा गिफ्ट ईदी कह सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल और है,
और इसमें यह भी है, गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। एक तो उसकी इज्जत नफ्स है, दूसरा आपके लिए जाहिर करना ये जायज नहीं है कि मैंने ऐसा किया था। जाहिर करने के मौके होते हैं, आप किसी आलिम के पास गए कि भाई मैंने इस तरह का काम कर लिया है, वो एक मौका है। उलमा ने लिखा किसी की नमाज कजा हो गई तो छुप के पढ़े, या ऐसे ऐसी नमाजों के बाद पढ़े जिसके बाद नफिल होते हैं, जैसे जोर के बाद नफिल होते हैं, उसको समझेगा सकता है नफिल पढ़ रहा है, उसने फजर की कजा पढ़नी थी, लेकिन असर के बाद नफिल नहीं होते तो असर के बाद पढ़ना जायज नहीं होगा, इसके लिए कजा नमाज घर में पढ़ सकता है।
क्रेडिट कार्ड की बात हो रही थी, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जो अगर पेमेंट हम डिले करते हैं, ओवरड्यू हो जाती है, उस पर तो मार्केट पड़ गया, वो ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग प्रोसेस पे कर देते हैं और उसके इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ता जिन चीजों पे, जैसे ग्रोसरीज वगैरह है।
एक बात समझने की कोशिश करें, आपका बैंक में अकाउंट ना हो या आपकी माली हालत ऐसी ना हो, नौकरी पेशा ना हो, आप बैंक क्रेडिट कार्ड देगा नहीं देगा?
नहीं देगा,
ठीक है ना। तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें,
किसी टाइम होता है डेबिट कार्ड की पोजीशन नहीं होती, क्रेडिट कार्ड को उस टाइम में पे तो कर सकते हैं ना, इन टाइम में अगर रिस्पेक्ट 25 या समथिंग अगर ऐड भी नहीं होता, जैसे मेडिसिन है, पेट्रोलिंग है।
मैं बैंकों की सोच है यहूदी सोच, करोड़ों के इश्तेहार छापते हैं, क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, 40 दिन में पेमेंट हो जाती है, बैंक को कुछ मिलेगा? बैंक कुछ मिलेगा? वो सोचते हैं दाना डालो कभी तो बंदा फंसेगा। तो मसला ये है कि हमारी कौम को दो चीजों से इस वक्त खतरा है आज की तारीख। एक उन ड्रामों से जो टीवी पर ड्रामे चलते हैं, फिल्म ड्रामे, जिसके अंदर अब करेक्टर लाकर एक नजरियाती सोच लाकर इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। एक तो खतरा है इस वक्त उस नजरियाती चीज से कि जो हमारी कौम में उतारी गई है, लो जी इसके बहाने उनके नजरियात बदलें, चेंज हों, इस्लाम से मुतनफिर हों, दूर हों। दूसरा खतरा है उन कंपनियों से जो नाजायज काम के लिए भी ऐसी मशहूरी करती हैं कि बिल्कुल शीशे में उतार लेती हैं। बंदा बोलता है यहाँ कितने फायदे हैं, वाह स्कीम आ रही है, आइंदा जनाब जिसके पास फला बैंक का कार्ड होगा उसको इतने फीसद जाए, जिसने नहीं वो कार्ड रखा तो वो देख लेते हैं। होता क्या है, उसने बेचारे ने खर्च करने थे 1000 रुपये, उसके बजाय वो 5000 रुपये खर्च कर लेता है और वो चीज़ भी महंगी मिलती है उसे। कंपनियों से बचना होगा। हम आज तक कार्डलेस थे, कम से कम डेबिट कार्ड हो जाए तो कार्डलेस बनना पड़ेगा। यूँ
हजूर बाज दफा ऐसे होता है कि दुकान के ऊपर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि पार्टी की नुमा, वो ये कहते हैं कि ये मेरा माल ले लो और इसको सेल कर देना, ठीक है, और इसके पैसे तय कर लो आप कि मुझसे इतनी उजरत लोगे, मसलन एक प्राइस बॉन्ड ही है इसके ऊपर 20 रुपए कमीशन लोगे, ठीक है, वो तो उसने तय कर लिया, और ये तय नहीं किया कि माल बच गया तो वो वापस लेगा या दुकानदार लेगा, इसके लिए शरीयत क्या होगा मसलन?
देखिए तिजारत है या कमीशन है, फर्क इसी से होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं छोटे से मिसाल समझाता हूं, किस जमाने में थरमास में लोग कुल्फी बेचते थे, देखा था किसी ने? एक आदमी कहता है ये कुल्फी इतने की बेची, जितने की चाय मर्जी बेचो। एक आदमी कहता है इतने की बेचनी है, इतना कमीशन मिलेगा, जाया हो गई, गल गई, उसकी होगी। तो देखा जाता है कि खरीदारी हुई है, जैसे फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, वो कहता जी मेरा माल है आप बिकवा दो इतने पैसे दूंगा। वो कोशिश करता है, 6 महीने हो जाते हैं, नहीं बिकते वापस कर देता है, तो ये खरीदारी नहीं ना। देखा जाएगा कमीशन है मायदा या तिजारत है, तिजारत है तो वापसी नहीं है, कमीशन है तो चीज मालिक की है।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ نے آخری جو سلائڈ چلائی تھی کہ جس نے وصول کر لیا ہے تو وہ اس کی تلافی کرے, تو جس نے دیا ہوا ہے یعنی جس نے قرض لیا تھا اور سود دیتا رہا ہے اس کے اوپر, اس کی بھی کوئی تلافی ہے؟ اور دوسرا بس اس بارے میں تھوڑا بتا دو.
اس کی تلافی صرف توبہ ہے کہ اس نے سود دیا کسی کو, پیسے قرضے میں لیے تھے, صرف توبہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو قرضہ تھا وہ بھی حرام ہو گیا, وہ نہیں. اس قرضے سے اگر کاروبار کیا وہ حلال ہے, جو اس نے دیا ہے وہ سود ہے. جی
ماشاءاللہ آپ نے یہ کورس کروایا, تو یہ کورس کرنے کے بعد اس چیز کی ہمیں اجازت ہے کہ لوگ مسئلے پوچھیں سود کے اور ہم بتائیں؟
لمٹ ہوتی ہے, خیر بات ہے, یہ ہم نے اپنے ذات کے لیے کیا ہے اور ایسا کوئی کرے گا بھی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دوسرے کو بیان کرنی ہے تھوڑا سا سنبھل کے, بہت ساری باتیں آپ گیٹ سے نکلیں گے ذہن سے نکل جائیں گی, اس لیے عرض کیا ہے کہ تھوڑا سا سمجھ کے کہ کیا بیان کرنا ہے کتنا بیان کرنا ہے. نیکسٹ.
جی یہ جو مکانات پراپرٹی کے اوپر ایڈوانس لیتے ہیں کرایہ داروں سے, اس سے جو فوائد حاصل کرتے ہیں وہ کیا سود میں آتے ہیں یا آگے؟
سود میں نے عرض کیا نا کہ اگر تو زیادہ پیسے دیے ایڈوانس میں اور کرایہ کم کیا ہے, کرایہ معاف کر دیا ہے, تو یہ سودی فوائد دیے.
نہیں میرا مقصد ہے اگر کرایے پہ مکان دیا ہے اس کا 2 ماہ یا 3 ماہ کا ایڈوانس لیا ہے اس سے, اس صورت میں کہ وہ مکان چھوڑنے سے پہلے اگر واجبات کلیئر نہیں کرتا بل وغیرہ یا
جتنا مارکیٹ میں رائج ہے, ہر مارکیٹ کا الگ حساب ہوتا ہے نا, چھوٹی مارکیٹ ہے اس میں کم ہوں گے, بڑی مارکیٹ میں زیادہ ہوں گے. مارکیٹ میں جتنا رائج ہے اتنا رکھنا ٹھیک ہے.
ٹھیک, مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہیں ذاتی
استعمال بھی کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے تھا کہ اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ اس لیے یوز کر رہا ہے کہ وہ ہارڈ کیش کیری نہیں کرنا چاہتا, جیسے اس طرح میں حالات ہیں ملک کے, تو وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سرکمسٹانسز کہ وہ یوز کرتا ہے صرف کریڈٹ کارڈ کے, ہارڈ کیش کیری نہ ہو, سیف رہے اس کی چیز, تو اس سینس میں اگر وہ یوز کرتا تو پرابلمٹیکل ہے.
مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر مسکرائیں گے, ناراض نہیں ہوں گے. میں امید رکھوں نا. کوئی 15-20 دن پہلے صاحب آئے تھے, یہی بات انہوں نے کی, پھر گرافک خریدنی ہوتی ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. میں کہا یار گرافک کتنی خریدنی ہوتی ہے؟ 50,000 کی خریدنی ہوتی ہے. 5-7,000 روپے کا آپ سامان خرید لو گے, 10 کا خرید لو گے, 15 خرید لو گے, آپ کے پاس وہ 70,000 والا موبائل ہے, وہ کہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ 70,000 والا موبائل تو ساتھ میں ہے, اور 10,000 روپے کے لیے آپ بولے کارڈ مجبوری ہے. تشریف رکھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
حضرت ہمارا کام آدم کلاتھ مارکیٹ میں ہے, تو فرض کیا ایک امبرائڈری والا, ہم اس کے پیمنٹ دے رہے ہیں تقریباً 750 روپے پر سوٹ, اس کو کچھ ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کو تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے اس کو ایڈوانس کی صورت میں چاہیے, وہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ نہ مجھ سے تھوڑا سا یعنی کہ ریٹ کم کروا لیں, تو آپ مجھے ایڈوانس کی صورت میں آپ مجھے 200-300-400 سوٹوں کی پیمنٹ یک مشت ادا کر دیں, تو اس صورت میں یہ کام کرنا کیسا؟
ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. تشریف رکھیں. آپ اس سے سوٹ خریدتے
جی؟
سوٹ خریدتے ہیں اس سے؟
نہیں, امبرائڈری کرواتے ہیں نا.
سوٹ آپ کے ہوتے ہیں؟
ہاں جی, کپڑا ہمارا ہوتا ہے, وہ مزدوری لیتا ہے ہم سے امبرائڈری کرنے.
مزدوری لیتا ہے؟
ہاں جی. تو مثال ہے کہ ہم 750 روپے سے بنوا رہے ہیں, اس کو ایسی کوئی ضرورت آن پڑتی ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے آپ نا تقریباً 1.5-2 لاکھ کا انتظام کر دیں, تو
اب جو بنا کے دے گا اس کو پیسے کم لے گا.
ہاں جی.
یہ سود ہے, یہ سود ہے.
اچھا,
اس کے پیسے کم کیوں ہوئے؟ قرضے کی وجہ سے ہوئے. یہ جائز
نہیں, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے,
پہلے آپ بتا چکے ہیں لیکن ایک بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں, ذرا دوبارہ دہرا دیجیے گا. جو سیکیورٹی لی جاتی ہے ایڈوانس کی شکل میں گھر کی یا شاپ کی, کرایہ بھی آ رہا ہے, کرایہ بھی طے ہے, لیکن جو سیکیورٹی ہے کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں؟
میں نے جو پہلی چیز سمجھائی نا, قرض, امانت, انویسٹ. قرض ہوتا ہی استعمال کرنے کے لیے, اور اس رقم کو بھی میں نے کہتی قرض ہے اور قرض استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے.
شکریہ.
اب جو ہے وہ یافتہ بھائی ملفوظات ارشاد فرمائیں گے.
ماشاء اللہ عز و جل, हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। सवाल इल्म की चाबी है और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और बदकिस्मती से जो दुनिया भर में आज मुसलमान तबाही का शिकार है, उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो दीन के शरीयत के उसूल हैं इनको छोड़कर किसी मुआशरे के उसूल अपना लिए। जब मुसलमान ट्रैक से हटे हैं फिर तबाही का शिकार हो गए, निजाम बदल गए सारे। अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें निजाम दिया वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए। मिसाल के तौर पर एक निजाम है हमारे पास कि जो अपने माँ बाप को रहमत भरी निगाह से देखे उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब वालिद चाहे अंग्रेज है, वालिद चाहे पठान है, वालिद चाहे चाइना में है, वालिद चाहे इंग्लिस्तान में चाहे हिंदुस्तान में, अगर वो मुसलमान है, बेटा मुसलमान है, मोहब्बत भरी निगाह से देखेगा उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। इंग्लिस्तान वाला, इंग्लैंड वाला ये नहीं कह सकता कि हमारे मुल्क में रवाज है कि इसको ओल्ड हाउस में जाके जमा कराना है, अब्बा जी बूढ़े हो जाए तो इनको धक्का दे रहे, चलो जी अब्बा जी बेकार हो गए तुसी, ये नहीं हो सकता। हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि अब इंग्लैंड गए तो वहां देखा कि यार अब्बा जी ने जो देना था वो तो दे दिया, हमें मकान भी ले दिया, जवान भी कर दिया, पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, अब बूढ़े बाप पे खर्च करने की जरूरत क्या। इंग्लैंड का रवाज बड़ा अच्छा है, अब्बा जी को बूढ़े ओल्ड हाउस में जमा कराओ, उनको अब्बा जी हम इंग्लैंड में आए, देखे यहां जहां देश वैसा देश वैसा देश, तो यहां रहना है ना, तो यहां रवाज ये है कि बूढ़ों को ना जमा कराते हैं ओल्ड हाउस में जाकर, वो चाहे सुअर खाएं चाहे शराब पिए, जो खाना दे उनकी मर्जी, जो जो करें। अब्बा जी आपको मैं फिक्र ना करूं, मिलने आता रहूं, आप चले जाए उधर। अब बताइए क्या ये इंसानियत है। हमने जिधर फायदा नजर आया है ना, हमें हमारा फायदा, हमने उस पर हाथ रख दिया कि यह निजाम सही। और बाद में जब उसने शाट मारी, करंट मारा ना उसने जोर से, फिर हम चीखते और चिल्लाते हैं। तो माशाअल्लाह आज हमारे पास मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत की बात है। दारुल इफ्ता मरकजुल औलिया लाहौर के भी माशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, अनस भाई। तो एक मुफ्ती अनस साहब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत लाहौर दाता दरबार यहां भी है, एक दारुल इफ्ता हमारा इछरे में भी है, लतीफ ज्वेलरी प्लाजा में, यहां भी तशरीफ फरमा है मुफ्ती साहब। तो अगर हम वाकई इसमें संजीदा हो, सीरियस हो, है मैटर बड़े संजीदा अहम मैटर है, वक्ती तौर पे हो सकता है कि आज किसी इस्लामी भाई के जेहन में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, फौरी तौर पर मैंने देखा है। एक है सबसे आसान काम वो है किसी को ये बोले कि आप नमाज पढ़ा करें, और जी माशाल्लाह रोजे रखें, नफल रोजे रखें, आप हज कर लेना, आप माशाल्लाह उम्रे पे जाना चाहिए, आपको हज पे जाना चाहिए, तो कहेंगे सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा अब अगर किसी से ये कहा जाए कि आपने आज के बाद फिल्म नहीं देखनी, आपने हराम रोजी की तरफ नहीं जाना, हलाल की तरफ जाना है, और नहयुन अलिन मुनकर बुराई से मना करना, ये जरा थोड़ा मुश्किल काम है। नेकी की दावत देना आसान है, बुराई से मना करना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह का करम है कि इन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है कि जो हमारे सामने तशरीफ फरमा है इस्लामी भाई वो क्या कहेंगे, ये चीज जायज है ये नाजायज है, ये हलाल है ये हराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल की तरक्की है, दावत इस्लामी दुनिया के 200 मुल्कों तक पैगाम पहुंचा चुकी है, उसकी एक वजह जो है वो है शरई उसूलों पर अमल करना, शरीयत पर अमल करना। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलिया ने यही समझाया है कि शरीयत पर अमल करना, जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उसी पर अमल करना है। हमने दावत इस्लामी के मदनी काम को नहीं देखना, मदनी अतियात को नहीं देखना, चंदे को नहीं देखना, हमें जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उस पर अमल करना। और माशाअल्लाह यही दावत इस्लामी की तरक्की और उरूज का राज जो मरकजी मजलिस शूरा समझती है वो यही है कि दावत इस्लामी को अल्लाह बरकत दे रहा है, उसकी वजह अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करना है। यकीनन जिन्होंने आज शरई मामलात लिए, किसी को कोई हुक्म जायज कहा गया, किसी को नाजायज कहा गया, किसी ने कोई सवाल किया होगा, कोई काम करता होगा उसके लिए जायज का हुक्म आया होगा, किसी के लिए नाजायज का हुक्म आया होगा, जो मुफ्ती साहब ने फरमाया, यकीनन اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں انہوں نے جواب دیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، جو فراست عطا فرمائی. پھر یہ اکیلے تشریف فرما نہیں ہے، ان کے ساتھ ماشاء اللہ دارالافتاء کے اور بھی اسلامی تشریف فرما ہیں. میرا مشورہ جو ہے وہ، اگر جو لوگ دنیا میں دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جو شرعی حکم آئے ہمیں اس پر بالکل لبیک کہتے ہوئے عمل کر دینا چاہیے، اور واقعی اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس پر اللہ کی رحمت سے عروج ملے گا، ہمیں اس پر ترقی ملے گی. کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی یہ سوچے کہ جناب میں تو جناب یہ اپنے کاروبار کو تبدیل کروں گا تو مجھے یہ گاڑی چھوڑنی پڑے گی، تو مجھے یہ گھر بھی تبدیل کرنا پڑے گا، تو مجھے تو اب کاروبار ہی تبدیل کرنا پڑ جائے گا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہمارے یہاں جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے نا، یوں سمجھیے کہ مر کے مٹی نہیں ہوتے ہم، ہم انتقال کرتے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ انتقال کر جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ہے نا، انتقال ہی ہوتا ہے نا ہمارا. تو جب انتقال ہو جاتا ہے نا تو آگے جو کرنسی چلتی ہے نا، جو دوسری کرنسی، مثال کے طور پہ کوئی عمرے پہ جائے اس کو ریال چاہیے، جو یو اے ای جائے اس کو درہم چاہیے، جو امریکہ جائے اس کو یو ایس ڈالر چاہیے، جو یو کے جائے اسے پاؤنڈ چاہیے، سٹرلنگ پاؤنڈ چاہیے، اگر وہ چائنا جائے گا تو چائنا کی کرنسی یوان چاہیے اس کو، جاپان جائے گا تو ین چاہیے. اب جب دوسرے ملک میں جائے گا تو کرنسی کنورٹ کروائے گا، کرنسی کنورژن چاہیے اس کو، یہ کرنسی پاکستانی نہیں لیں گے وہ. اسی طرح جب بندہ انتقال کر گیا تو نوٹ نہیں چلیں گے، کپڑے نہیں چلیں گے، تحفے نہیں چلیں گے، کرنسی کنورٹ کرانی پڑے گی. کس میں؟ نیکیوں میں. ہم اپنی والدہ کے لیے سوٹ لے کے آتے تھے ہر سال عید پر، چھوٹی عید پر، بڑی عید پر. امی کا انتقال ہو گیا، اب عید آئی تو امی یاد آ رہی، اب کیا سوٹ جا کر امی کی قبر پہ رکھائیں گے ہم؟ جی نہیں. اس سوٹ کو کنورٹ کرنا پڑے گا کس میں؟ نیکیوں میں. اب خالہ کو تحفے میں دیں، ٹھیک ہے نا، نانی کو تحفے میں دیں، کسی قریبی رشتہ دار کو تحفے میں دیں، یا کسی غریب کو تحفے میں دیں، جس کا ہمیں ثواب ملے، ٹھیک ہے، وہ ثواب پھر امی کے سارے ثواب بھجوائیں گے ہم. ایسے ہی ہے. تو کرنسی کنورٹ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے پاس شعبہ ہے، کرنسی کنورٹ کر دیتے ہیں دعوت اسلامی کا شعبہ، وہ آپ کے پیسے سے مسجد بنا دیں گے، وہ آپ کے پیسے سے مدرسہ بنا دیں گے، وہ آپ کے پیسے کو کوئی آگے نیکی کے کام میں انویسٹ کر دیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب کا حکم تو پھر حکم ہی ہوگا نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان. یا اللہ عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا. یا اللہ عز و جل آج کے اس علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا ہماری لیے قبول فرما لے. مولا اس علم دین کی مجلس کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. یا اللہ عز و جل آج جتنے بھی اسلامی بھائی آئے، یا اللہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، مولا تو نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، مولا اس میں اور برکتیں اور اضافہ فرما، علم دین کی اور مجالس مولا ہمیں نصیب فرما. اسی طرح ہم مفتیان کرام کی، علماء کرام کی زیارت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، علم دین حاصل کریں، شریعت پر عمل کریں، اپنے تمام معاملات کو بشمول کاروبار، گھر بار، سارے معاملات کو یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کریں. وراثت کے معاملات، اولاد کی تربیت کے معاملات، گھر کے معاملات، مولا سارے کاموں کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرما، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، مفتی اسلام بنا دے، یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان سے فیضیاب دنیا میں بھی نصیب فرما، ان کے فیض و برکات مولا ان سے آخرت کے نفع ہمیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔